समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया के समाचार, साथ ही वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ है तन्वी खुराना।
Namaskar, good morning Vishal and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the entire Akashwani network of course. Well yes, Vishal has already introduced you to our daily news magazine program Aaj Savere and like he said that we have a lot in store for all of you, so just be with us till 8 o'clock and today is 30th of March 2026 and it's also Monday, so I wish you all a very Happy Monday. Let's begin our program with the news headlines.
जी, प्रमुख समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण के अंतर्गत 152 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल निर्धारित की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी और इस चरण में 142 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा।
In a major administrative overhaul in West Bengal, the Election Commission has removed the officers in charge of 170 police stations across the state, including high-profile assembly constituencies like Bhavanipur and Nandigram. Based on the recommendations from the Chief Electoral Officers Department, the Commission has approved the transfer and realignment of a total of 184 police officials, including 11 high-ranking officers. The Election Commission has issued a clear directive that no laxity will be tolerated in the conduct of free and fair elections.
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत असम और पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में असम की प्रगति सबके सामने है और राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के कारण लोग डबल इंजन वाली एनडीए सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन वाली एनडीए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में पुदुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। उन्होंने पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को लेकर उत्साह भी व्यक्त किया।
The Lok Sabha will today take up the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025 for further discussion. The bill aims to further amend the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It seeks to address procedural delays and interpretational issues among companies and individuals. The House is also scheduled to raise a discussion on the efforts to free the country from left-wing extremism. Rajya Sabha is scheduled to take up the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026 for consideration and passing. The bill aims to regulate the general rules governing the recruitment and conditions of the service of Group A General Duty Officers and other officers in the Central Armed Police Forces.
सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी करके 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दे दी है। ये निर्णय विश्व भर में ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर रही भू राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है जहां सामान्य परिस्थितियों में केरोसिन का उपयोग बंद कर दिया गया था। अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 60 दिनों तक या अगले आदेश तक वैध रहेगी।
Once upon a time, film promotion was done through posters. People used to throng cinema halls after seeing big hand-painted posters. With changing time and technology, this art of film promotion faded. To revisit the era of film posters, Tuli Research Center for India Studies, TRCI, organized a poster exhibition at the International Film Festival of Delhi. The initiative has attracted significant attention through its special and rare collection of bygone golden era of Indian cinema. Talking to Akashwani founder TRCI, Neville Tuli said it is a unique work to compile so many artifacts at just one place.
ये पहली बार कभी किसी ने कोई देश दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक टू इंडिया एंड मैंने पहली बार ये दिखाने की डिसीजन लिया था क्योंकि ये यूनिकली इंडियन क्रिएशन है एंड व्हेन यू सी देम टुगेदर देन इट हिट्स यू कि यार ये तो हमने देखा होगा एक दो देखे होंगे लेकिन 101 बार इज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस.
Among the most emotional presentations at the exhibition was one of the greatest Indian films, Mughal-e-Azam. In addition to posters, the unique identity of Indian cinema, Jubilee trophies, has also been exhibited in large numbers, including rare trophies for Silver Jubilee and Golden Jubilee of many films.
कौशल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता कल से ग्रेटर नोएडा में शुरू हो गई. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से 650 से अधिक कुशल युवा भाग ले रहे हैं जो राष्ट्रीय और वैश्विक उद्योग मानकों के अनुरूप 63 कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे. मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतियोगिता भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण और विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता शंघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
In IPL cricket, Mumbai Indians defeated Kolkata Knight Riders by 6 wickets in the second match held in Mumbai last night. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted a massive total of 220 for 4. In reply, Mumbai Indians overhauled the target for the loss of 4 wickets in 19.1 overs. Mumbai Indians bowler Shardul Thakur was named the player of the match after picking up 3 wickets. And today, Rajasthan Royals will take on Chennai Super Kings at the Barsapara Cricket Stadium in Guwahati at 7:30 PM.
और बात खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की. छत्तीसगढ़ में चल रहे पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेलों में आज छठे दिन रायपुर में तीरंदाजी, हॉकी और फुटबॉल के मैच होंगे जबकि सरगुजा में कुश्ती प्रतियोगिताएं जारी रहेंगी. एथलेटिक्स स्पर्धाएं बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में शुरू होंगी. कल पांचवें दिन रायपुर में हॉकी, फुटबॉल और भारोत्तोलन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जबकि कुश्ती प्रतियोगिताएं अंबिकापुर में आयोजित की गई. कल झारखंड और हिमाचल प्रदेश के पहलवानों ने दो दो स्वर्ण पदक जीते. और अब मेट्रो से जुड़ी कुछ खबरें, महानगरों के समाचार. सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 राजधानी को वैश्विक फिल्म हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. ये महोत्सव दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है. मंगलवार तक चलने वाले इस महोत्सव में 47 देशों की 125 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है. महोत्सव का उद्देश्य रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करना और नई प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है. यह आयोजन भारतीय सिनेमा के वैश्विक प्रभाव और सॉफ्ट पावर के रूप में उसकी भूमिका को भी दर्शाता है. इस महोत्सव के माध्यम से दिल्ली अब केवल प्रशासनिक राजधानी ही नहीं बल्कि धीरे धीरे रचनात्मक और मनोरंजन उद्योग के केंद्र के रूप में भी उभर रही है. फिल्म महोत्सव में आज गाला, रेड कारपेट और समापन समारोह आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर शोले फिल्म के रिस्टोर संस्करण की विशेष स्क्रीनिंग होगी. साथ ही प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर द्वारा अभिनय पर मास्टर क्लास आयोजित की जाएंगी.
And from Delhi, let's move on towards Chennai. The regional weather department has predicted a rise in temperatures in April. Temperatures may reach up to 40 degrees Celsius with dry weather expected in the city and suburbs. Across the state, temperatures could be around 2 to 3 degrees Celsius above normal. Last week, temperatures were recorded around 35 to 36 degrees Celsius. And we have some more news from Chennai itself. A team from the University of Madras has discovered a ring well from the Sangam era at Chettimedu Pathur in Chengalpet district. Jinu Koshi, excavation in charge, said that the well was found at a depth of 1.49 meters and has six interlocking rings, wider at the base and narrower at the top. He said this type of construction has also been seen at other Sangam sites like Kiladi and Pattarai Perumbudur, showing advanced ancient building techniques.
और अब रुख कर लेते हैं मुंबई का. नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अप्रैल से 30 नए घरेलू मार्गों पर उड़ानें शुरू होंगी. एक बयान में एनएमआईए ने घोषणा की कि ग्रीष्मकालीन शेड्यूल में उड़ान संचालन बढ़कर प्रतिदिन लगभग 156 उड़ानें हो जाएगा. दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु और कोचीन जैसे शहरों में सबसे अधिक उड़ानें होंगी. ये हवाई अड्डा कई टीयर वन और टीयर टू शहरों से जुड़ेगा, जिससे यात्रा में सुधार होगा और मुंबई क्षेत्र में बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई के ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों में 2640 आवास इकाइयों की बिक्री की घोषणा की है. ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होंगे और लॉटरी का ड्रॉ 15 मई को होगा. इन आवासों में नए, पुनर्विकसित और बिना बिकी इकाइयां शामिल हैं. आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे एजेंटों के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे आवेदन करें.
And now let's talk about Bangalore. The Karnataka government said there is no shortage of auto LPG. Supply is stable across the state. According to official sources, auto LPG is available at 72 auto LPG dispensing stations, including 31 in Bangalore. Officials noted that supply has increased recently. Every day, about 4 lakh domestic and 18,000 commercial LPG cylinders are being distributed across Karnataka. Bangalore East City Corporation Commissioner D.S. Ramesh announced that authorities will take over 51 properties in Mahadevpura and K.R. Puram due to unpaid property tax. He said, despite notices, reminders and auction efforts, these properties neither cleared dues nor were sold. Owners of these properties have now been given a final one-month chance to pay dues. If they fail, the government will take ownership, recover the tax and return any extra money to the owners.
और बात कोलकाता पश्चिम बंगाल की. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है. अधिकारियों ने 26 फरवरी से 29 मार्च 2026 के बीच नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुओं और मुफ्त उपहारों सहित 250 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त की हैं.
And about Hyderabad, the Telangana State Road Transport Corporation, TGSRTC, said its Mahalakshmi free bus travel scheme has helped women save about 10,000 crore rupees in travel costs. The scheme, launched on 9th of December 2023, has issued over 290 crore free tickets in around 28 months. State Transport Minister Poonam Prabhakar and TGSTRC Managing Director Y. Nagi Reddy IPS said earlier women spent about 1500 to 2500 rupees per month on bus fares, which they can save now. With this scheme, women's bus usage has increased from 40 to over 67%, with more than 35 lakh women travelling daily for free. The government also plans to introduce chip-based smart cards soon to make travel easier without needing Aadhaar verification each time.
मेट्रो न्यूज के बाद अब बात मौसम की कर लेते हैं. और दिल्ली के अगर हम मौसम की बात करें तो आज हल्की आंधी या तेज हवाएं कह सकते हैं और बारिश की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई की बात करें तो वहां आज आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 25 degrees and maximum will be around 31 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 21 degrees and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. The temperature will hover somewhere between a minimum of 24 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius.
और अब नजर डाल लेते हैं इतिहास में आज के दिन कौन-कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी।
Let's begin with the year 1699. Guru Gobind Singh Ji established the Khalsa Panth at Anandpur Sahib, Punjab. The event transformed Sikh identity, laying the foundation for the Sikh warrior saint tradition. In the year 1842, Dr. Crawford Long performed first surgery using ether anesthesia in Georgia, USA. Long removed a neck tumor from a patient without pain, revolutionizing the surgery and marking the beginning of modern anesthesiology.
और 1919 में आज ही के दिन यानी 30 मार्च 1919 को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने की घोषणा की थी। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित एक दमनकारी कानून था जिसे काला कानून भी कहा गया। इसके तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए या वारंट के गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती थी। जस्टिस सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर बने इस कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम को कुचलना था जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया।
In the year 1929, first Imperial Airmail service departed London for India. The Airmail left London on 30th of March and arrived in Karachi on 6th of April. The service dramatically reduced communication time between Britain and India, connecting the empire faster than traditional sea mail.
आज ही के दिन 1949 में 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान की स्थापना की गई थी। आजादी के पहले राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। पूरे राजपुताना में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन रियासतों और ठिकानों के एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना। इन सभी रियासतों का एकीकरण 7 चरणों में पूरा किया गया।
In the year 1959, 14th Dalai Lama sought refuge in India. Tenzin Gyatso reached the India-Tibet border area while fleeing Chinese forces in Lhasa. Although full entry into India occurred on 31st of March, March 30th marked his arrival at the border and the beginning of his exile in India.
1982 में आज के दिन नासा के अंतरिक्षयान कोलंबिया ने STS-3 मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापसी की थी।
In the year 1987, Vincent van Gogh's paintings Sunflowers sold at Christie's London for $39.9 million, a record-breaking auction price at that time.
साल था 1992 और तारीख 30 मार्च। इस दिन जाने माने फिल्मकार सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफटाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी साल उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कुल 37 फिल्में बनाने वाले सत्यजीत रे की यादगार फिल्मों में पाथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार और चारुलता प्रमुख थी। और 2006 में आज ही के दिन ब्रिटेन में आतंकवाद निरोधक कानून लागू हुआ था।
In the year 2012, fourth BRICS summit in New Delhi concluded follow-up discussions on this date. While the main summit sessions and Delhi declaration concluded on 29th of March, official follow-up meetings and departures continued on 30th of March.
और इतिहास की बात के बाद अब उल्लेख करेंगे उन व्यक्तित्वों का जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था। और इस कड़ी में तन्वी सबसे पहले हमारे पास नाम जो है वो है मशहूर अभिनेत्री देविका रानी का। भारतीय सिनेमा में एक ऐसा समय भी था जब फिल्मों में महिलाओं के रोल भी पुरुष ही निभाते थे। धीरे धीरे महिलाओं की सिनेमा में एंट्री हुई, उनका प्रवेश हुआ और इन्हीं शुरुआती महिलाओं में से एक थी देविका रानी, जिन्हें भारतीय फिल्म जगत की पहली सुपरस्टार भी कहा जाता है। भारतीय सिनेमा की पहली स्थापित नायिका जो अपने युग से कहीं आगे की सोच रखने वाली अभिनेत्री थी, उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं को चुनौती देते हुए नए मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को स्थापित करने का काम किया था। देविका रानी ने 10 वर्ष के अपने फिल्मी करियर में कुल 15 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उनकी हर फिल्म को क्लासिक का दर्जा हासिल है। विषय की गहराई और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी उनकी फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्म जगत में नए मानदंड स्थापित किए। और अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज बैनर की भी स्थापना की थी। 1933 में उनकी फिल्म आई थी कर्मा, और ये देविका रानी के कैरियर का अहम मोड़ साबित हुई फिल्म। और 1936 में एक और फिल्म आई और जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, अछूत कन्या। और इस फिल्म ने देविका रानी को फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बना दिया था।
And today we are also mentioning Norah Jones. Today is her birthday, an American singer, songwriter and musician. She has won several awards for her music and as of 2023 has sold more than 53 million records worldwide. Billboard named her the top jazz artist of the 2000s decade. She has won 10 Grammy Awards. Let's hear a beautiful track titled Don't Know Why by her.
Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break.
In 2002, Norah Jones launched her solo music career with the release of the album Come Away With Me, which was a fusion of jazz with country, blues, folk and pop. It was certified diamond, selling over 27 million copies, making it the highest selling debut studio album by a solo artist in the 21st century. And I'm sure you have heard multiple songs by her, be it from the studio albums Feels Like Home, Not Too Late, The Fall and many more. So let's hear another track by her titled Sunshine.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, ooh.
बॉलीवुड में कुछ गीतकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने शब्दों के जरिए जज्बातों को सीधे दिलों तक पहुंचाया है। आनंद बख्शी उन्हीं चुनिंदा गीतकारों में से एक रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके लिखे गीतों की खास बात यह थी कि वो आम बोलचाल की भाषा में होते थे और जिनमें भावनाएं साफ झलकती थीं, चाहे प्यार हो, दर्द हो, दोस्ती हो या फिर देशभक्ति। उन्होंने हर तरह की भावनाओं को बहुत ही सुंदर शब्दों में उकेरा। बचपन से ही मजबूत इरादे वाले आनंद बख्शी अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई पहुंचे और इनकी मुलाकात वहां मशहूर अभिनेता भगवान दादा से हुई। भगवान दादा ने इन्हें अपनी फिल्म में बड़ा आदमी में गीतकार के रूप में काम करने का मौका दिया और इसके बाद गीतकार के रूप में उनके सिने करियर के सफर की भी शुरुआत हो गई। वर्ष 1965 में जब जब फूल खिले फिल्म प्रदर्शित हुई और उनके गाने सुपरहिट रहे और गीतकार के रूप में उनकी पहचान बन गई। और फिल्म मिलन के सदाबहार गानों के जरिए उन्होंने गीतकार के रूप में नई ऊंचाइयों को छुआ। आइए सुनते हैं उनके लिखे गीत को, फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। चार दशक के अपनी फिल्मी गीतों के बेताश बादशाह रहे आनंद बख्शी ने 550 से भी ज्यादा फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखे थे।
So let's talk about another great personality. And before taking her name, let me just play this track and I'm sure you'll be able to recognize her. And this song is from the movie Titanic. And the title is My Heart Will Go On. song made her a popular name. She is nobody else but Celine Dion. Today is her birthday, a Canadian singer, entrepreneur and philanthropist, dubbed as the Queen of Power Ballads. Well, she is known for her powerful, technically skilled vocals and commercially successful works. And I'm sure you have heard multiple songs by her, be it I'm Alive and I'm Your Angel, All By Myself, That's The Way It Is, Think Toys, To Love You More, and many more. So here comes another track by her, a very lively track titled I'm Alive.
I get wings to fly, oh, I'm alive. When you call my name, when I hear you breathe, I get wings to fly, I feel that I'm alive.
Celine Dion it is. She has won 5 Grammy Awards, 20 Juno Awards, 7 American Music Awards, 9 Billboard Music Awards, and stars on the Hollywood Walk of Fame and also Canada's Walk of Fame.
भारत में अगर टेलीविजन को एक शक्तिशाली सामाजिक हथियार बनाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वे निर्विवाद रूप से मनोहर श्याम जोशी हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। 1984 में 154 एपिसोड तक चले उनके लिखे धारावाहिक हम लोग ने उन्हें भारतीय सोप ओपेरा का जनक बना दिया था। लेखक बनने से पहले मनोहर श्याम जोशी पत्रकार थे। ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हुए उन्होंने आवाज की ताकत पहचानी और फिल्म्स डिवीजन में वृत्त चित्र लिखते हुए सिनेमाई दृष्टि भी पाई। 1986 में आया धारावाहिक बुनियाद और इसके बाद कक्का जी कहीं से लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने तक उन्होंने टीवी के पर्दे पर जो व्यंग और मनोवैज्ञानिक खास से रचा उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। उनका पहला उपन्यास था कुरु कुरु स्वाहा जो 1980 में आया और उनका उपन्यास कसप हिंदी की सबसे खूबसूरत और त्रासद प्रेम कथाओं में गिना जाता है। क्या आपके लिए उन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
And today is the birthday of Eric Clapton, an English rock and blues guitarist, singer and songwriter. He's regarded as one of the most successful and influential guitarists in rock music. Eric Clapton ranked second in Rolling Stone's list of the 100 greatest guitarists of all time and fourth in Gibson's top 50 guitarists of all time. He has received 18 Grammy Awards as well as the Brit Award for Outstanding Contribution to Music. So let's hear an amazing track by him titled Wonderful Tonight.
और आज ही जन्म हुआ है नागेश कुकुनूर का, फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और अभिनेता, और समानांतर सिनेमा में अपने काम के लिए इनको जाना जाता है। हैदराबाद ब्लूज, रॉकफोर्ड, इकबाल, डोर, आशाएं, लक्ष्मी और धनक जैसी फिल्में का इन्होंने निर्देशन किया है, इनके निर्माता हैं। और कुकनूर को उनके काम के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2006 में नागेश को फिल्म इकबाल के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत।
आशा है जिंदगी, आंखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी।
जी, आशा ही जिंदगी है और आंखों में हम सभी के सपने तो हैं ही, और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो फिलहाल समय हो रहा है अब कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने का, तो अनुमति दीजिए विशाल शर्मा और तन्वी खुराना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार,
नमस्कार।